पेज नंबर 19, अध्याय 3, संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का उद्गम एवं विकास। संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का उद्गम एवं विकास। संगीत शिक्षण की यह प्रणाली सबसे प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ प्रणाली भी मानी जाती है। इस परंपरा को गुरुकुल पद्धति भी कहते थे। गुरुकुल का अर्थ है गुरु के गृह में रहकर विद्या सीखना। भारतीय संगीत में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार कवि कबीर दास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संगीत जगत में गुरु को इसी रूप में आदर प्राप्त था। पंडित रविशंकर जी के अनुसार गुरु, विनय और साधना ये तीनों इस परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जो किसी विषय से पूर्ण रूपेण परिचित करवाने का उपदेश एवं ज्ञान दे, वही गुरु की पदवी ग्रहण करने योग्य है। गुरु को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसलिए गुरु का आदर अन्य सब मनुष्यों से अधिक किया जाना चाहिए। वी गिव अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस टू द गुरु फॉर वी कंसिडर हिम टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन। देयर इज अ सेइंग, पानी पिया छान के, गुरु बनाया जान के। पेज नंबर 20, विच मीन्स दैट One should drink water only after it has been filtered, and one should take a guru only after one feels sure of the decision. दूसरा गुण विनय से तात्पर्य विनम्रता से है। विनम्रता को बहुत बड़ा गुण माना जाता है। प्रत्येक शिष्य यह समझता है कि उसका निवारण अपने माता पिता और गुरु का आदर करने से ही होगा। इसलिए प्राचीन काल में बालकों को इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि वे लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में स्वेच्छापूर्वक पदारूढ़ सभा की अधीनता स्वीकार करें। इस शिक्षण पद्धति का तीसरा गुण साधना था, जिसका तात्पर्य अभ्यास, कठिन परिश्रम और अनुशासन से है। द थर्ड प्रिंसिपल टर्म एसोसिएटेड विथ आवर म्यूजिक इज साधना, विच मीन्स प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। इट मीन्स प्रैक्टिसिंग विद अ फैंटेस्टिक सील एंड ordained dedication to the guru and the music. Shishya prayah anushasan ko swayah grahan kar leta hai. Anushasan use seekhna nahi padta hai. Is prakar gurukul paddhati mein guru, vinay aur sadhana bahut mahatv rakhte hain. Vedon ke samay se hi संगीत शिक्षा गुरुमुख से दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करके कठोर अनुशासन, नियमित एवं संयमित जीवन बनाते हुए एवं सतत साधना करते हुए गुरु द्वारा दी गई संपूर्ण शिक्षा को पूरा कंठस्थ करना ही शिष्य का साधना था। शिक्षण संस्थान का इस पद्धति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षण संस्थान जन कौतूहल से दूर एकांत में प्रकृति की गोद में होता था, जहाँ के सौंदर्य से दर्शक स्वयं प्रभावित हो प्रभु की महिमा गा उठता था। ऐसे स्थान में चित्त को एकाग्र करना अपेक्षाकृत आसान होता था। इस प्रणाली में गुरु अपने शिष्य को सिखाने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता था। इस प्रकार गुरु शिष्य का हर समय का साथ उनके संबंधों में मधुरता व प्रगाढ़ता लाता था। संगीत सीखने के लिए शिष्य को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, बल्कि उसका स्वभाव एकाग्रता व कठिन साधना के प्रति तत्परता ही गुरु के प्रति सच्ची भेंट थी। शिष्य को गुरु के आश्रम में रहकर अथवा वहां जाकर सीखना पड़ता था। सुपात्र सिद्ध होने पर गुरु की शिष्यता प्राप्त होती थी। गुरु प्रसन्न होने पर सीना बसीना तालीम देता था। श्रद्धावंत शिष्य गुरु की सारी विशेषताओं और कला की खूबियों को यथाशक्ति बटोरता था। शिष्य की सफलता के प्रतिरूप बन जाने में ही मानी जाती थी। पेज नंबर 21। जिस प्रकार आजकल घरानेदार शिक्षण पद्धति में किसी को गायकी विशेष को स्वीकार करना हो तो उसे उस्ताद या गुरु के हाथों अपनी कलाई पर डोर बांधकर पवित्र मंत्रों के उच्चारण में गंडा बंधवाना पड़ता है, छात्र अपने गुरु को पदावंदन करता है और सारे गामा की प्रारंभिक शिक्षा से उसकी विधिवत शिक्षा प्रारंभ की जाती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी इस विधि का बड़ा महत्व था। नए विद्यार्थी की व्यवहारिक शिक्षा आरंभ करने के लिए एक विशिष्ट परंपरागत प्रथा गंडा समारोह का आयोजन होता था, जिसमें उस्ताद अपने शागिर्द की कलाई पर एक गंडा बांधता था और कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता था। इसके पश्चात ही गुरु अपने शिष्य को संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ करता था। उस समारोह में एक पवित्र अनुष्ठान समझा जाता था और उस्ताद और शागिर्द के बीच हुए संबंधों को आजीवन निभाना होता था। इस समारोह के फलस्वरूप शिष्य को भी कुछ अधिकार मिल जाता था तथा उसके सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण में उसे अपने उस्ताद तथा उसके संबंधियों का संरक्षण समर्थन प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार गुरु की निजी दिलचस्पी गुरु और शिष्य के निकट संबंध के फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए भी शिष्य को लगन और साहस के साथ अध्ययन और अभ्यास की प्रेरणा मिलती थी। सर्वप्रथम गुरु सातों स्वरों का अभ्यास करवाता था, फिर आगे का पाठ दिया जाता था। ताल और लय की शिक्षा भी साथ साथ चलती थी। शिक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से दिया जाता था। पाठ्यक्रम जैसी कोई वस्तु नहीं थी और न ही संगीत के बंदिशों को लिखने के लिए स्वरलिपि जैसी कोई वस्तु थी। शिष्य केवल गुरु की पूरी नकल करने की कोशिश करता था। संगीत से संबंधित अधिकतर व्यक्ति यह मानते हैं कि संगीत गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जा सकता है। आधुनिक संदर्भ में विश्वविद्यालय स्तर तक संगीत की सामूहिक शिक्षा दी जाती है, किंतु संगीत शिक्षक स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि संगीत शिक्षा की यह पद्धति संस्थागत शिक्षा पद्धति में उपयोगी नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल से जब से नियमबद्ध शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ, तभी से संगीत शिक्षा के लिए गुरु शिष्य परंपरा का अनुशीलन किया जाता रहा है। वैसे तो संगीत शिक्षा के लिए गुरु शिष्य परंपरा का अनुशीलन किया जाता रहा है वैसे तो प्राचीन काल में हर विषय की शिक्षा विद्यार्थी आश्रमों में रहकर गुरु शिष्य परंपरा से ही ग्रहण करते थे। तक्षशिला जैसे अनेक प्राचीन गुरुकुल आज भी अपनी गाथा के मन्यावेशस के रूप में विद्यमान है, किंतु संगीत के संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। पेज नंबर 22। संगीत एक क्रियात्मक कला है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही क्रियात्मक प्रदर्शन के माध्यम से सीखा जा सकता है। इसी कारण प्राचीन काल में ही भरतकार आदि अनेक विद्वान संगीत की शिक्षा अपने शिष्यों को सीना बसीना देते थे। इन्हीं से आगे चलकर गुरुओं के नाम पर अनेक संप्रदाय और मत स्थापित हुए, जैसे भरत संप्रदाय अथवा भरत मत, हनुमत संप्रदाय, कल्लीनाथ मत, शिव मत आदि। ये सभी संगीत एवं नाट्य के स्वतंत्र संप्रदाय थे जिनकी अपनी पृथक पृथक मान्यताएं थीं। दत्तिल, कोहल, मतंग तथा अभिनव गुप्त यानी भरत मत के अनुयायी थे। प्राचीन प्रबंधगान की शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा एवं साधारणी गीतियां ध्रुवपद की गौहरी, डागुर, नौहार, खंडार वाणी वानियां तथा ख्याल के ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, किराना इत्यादि घरानों का विकास गुरु शिष्य परंपरा की विशेषताओं के आधार पर ही हुआ। गुरु शिष्य परंपरा काफ़ी समय तक चलती रही। धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ गुरु शिष्यों में संकीर्णता बढ़ने लगी। इस संकीर्णता के कारण अधिकतर गुरु शिष्यों से संगीत के मुख्य गुर छिपाने लगे। इस प्रकार क्रमशः इस संगीत विद्या के गुरु लुप्त होते गए। इसलिए आज प्राचीन विद्या का कुछ ही अंश हमें प्राप्त होता है।